प्रवचन रत्न चिंतामणि भाग दूसरे का हम पृष्ठ क्रमांक 63 पर आए हैं। यह हमारा आखिरी पैराग्राफ चल रहा है। देखो, ये गाथा में ये जो 55 नंबर की जो गाथा है उसमें आचार्य बताते हैं कि ऐसा जो शुद्ध आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, उसमें तुझे रुचि क्यों नहीं होती। उन्हें बहुत आश्चर्य लगता है कि पहले तो यह बताया था कि इसमें ऐसे फला फला स्थान नहीं है, यानी यह आत्मा हर्ष स्थान नहीं है, अहर्ष स्थान नहीं है, ऐसी सारी बातें बताकर अब यहां पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं कि ऐसा शुद्ध चैतन्य जो तेरा स्वरूप है तो उसमें तुझे रुचि क्यों नहीं होती। ये बात अपनी चल रही है। अब यहां कह रहे आही कहे छे के अरे रे आवा आत्मानी रुचि केम करतो नथी। आम कहीने मुनिराज जरा ओलंभो एटले ठपको आपे छे। छठे सातवें गुणस्थाने झूलवा वाला वनवासी भावलिंगी दिगंबर संत मुनि के जेनो पंच परमेष्ठीमा समावेश छे ते वो कहे छे के अरे प्रभु आत्मा आवो छे ने भाई। आत्मा शाश्वत छे अने तेमा ऊंडे उतरता ते एकला सुखती भरेलो छे एम जणाय छे। अंदर आत्मा मा प्रवेशता सुख मळे छे हो, बाकी बार मा क्या सुख छे। वळी ते अरूपी छे, निराकार छे, चैतन्यामृत थी भरपूर भरेलो छे। एटले चैतन्य जे अमृत जेवु छे अने एनाथी ए पूरेपूर भरेलू छे। हवे ते अरूपी छे, निराकार छे, ए ज बधु जे कहेवामां आवे छे। तो निराकार एटले शुं समझाय छे हरीशभाई? आत्माने निराकार कह्यो तो ए निराकार जे कह्युं छे एमां शुं अपेक्षा लागे छे एने कोई खबर छे तमने? बोलो भाई। हाजी, आकार रही छे तो ये बात साची के केम? हाँ, तो केवो आकार रही छे? ने निश्चय थी शू छे? क्या कारण? नलिन भाई आप बोलो। हाँ नलिन भाई बोलो, क्या ये कह रहे सही बात है? नहीं तो सही क्या है? प्रतिभा सही आप बताएंगी? हाँ क्या बोलो बोलो? प्रमेयत्व गुण तो द्रव्यत्व गुण। अच्छा आप क्या कहते हैं? जितने सारे 1001 गुण हो बता देना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ प्रतिभा सही आप। हाँ क्या कहा आपने? किसमें? आत्मा में प्रतिष्ठित गुण है? कैसे? हाँ आत्मा का सामान्य गुण ही है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो 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 आप क्या कहना चाहते हो वो मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हो ये सामान्य गुणों में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, उनको सामान्य क्यों कहा जाता है? कि प्रत्येक द्रव्य में वह पाया जाता है। वही गुण नहीं, सामान्य नाम का गुण प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए उसको आकार है। तो फिर निराकार कहा है वो क्यों कहा, ऐसा मेरा प्रश्न है। तो उन्होंने कहा व्यवहार से उसको ऐसा कहा। तो फिर एक्चुअली क्या है वो? प्रतिभा तो आप जानती हैं? हाँ नहीं, निराकार यानी अरूपी नहीं। दिव्या बहन आप जानती हैं? नहीं आप बोलना। हाँ जैसे हमको तुमको जो अभी संसारी जीव है उनके आत्मा का आकार शरीराकार है, वैसा वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक का आत्मा का जो आकार है वो अपने असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन शरीर का आकार नहीं है इस अपेक्षा से उसे निराकार कहा है। और उसको आकार है ऐसा क्यों हम मानते हैं? क्योंकि वह प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण यह बताता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य को कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। अभी शरीर के आकार से नहीं है इसलिए सिद्धों को भी सिद्ध भी कैसे हैं? अशरीरी है ना, तो उनको भी निराकार कहने में आता है। ख्याल में? तो अगर हम ऐसा मानेंगे तो आकाश द्रव्य भी अरूपी है तो उसको भी निराकार बोलना पड़ेगा। ख्याल में आया? हाँ ये अरूपी किसको कहते हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसे जो द्रव्य है वे सारे अरूपी हैं। ऐसे कितने अरूपी द्रव्य हैं? 5 है ना, अभी ख्याल में आ गया ना। और रूपी द्रव्य कितने हैं? तो अभी मुझको ये बताओ अमूर्तिक द्रव्य कितने हैं? हाँ मूर्तिक 5, अमूर्तिक 5। और मूर्तिक कहो या रूपी कहो अर्थ एक ही है। ये बात समझने के लिए मैं उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। ख्याल में आया? तो क्या कहते हैं, रूपी कहो या मूर्ति कहो अर्थ एक ही है। अभी कई जीवों की ऐसी मान्यता है रूपी कहने में जो दिखता है यानी जिसमें वर्ण गुण दिखे वह रूपी, ऐसा नहीं है। सुनना, स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों गुण उसमें होते ही है, क्योंकि एक गुण होगा तो अन्य गुण होता ही है, ऐसा नियम जो बताता है। वो कौन सा संबंध बताता है? भाई बोलना हो तो जरा खा पी के शाम को आना, मैं बेहरा आदमी हूं, मेरे को हंसते बोलने से समझ में नहीं आता है। हाँ डॉक्टर आप जानते हैं? बहुत बढ़िया। अविनाभावी संबंध यानी एक गुण होगा तो अन्य गुण होंगे, तो कर्म है ना बेन। कर्म तो हमको दिखते भी नहीं, ऐसा स्पर्श भी नहीं होता है, फिर भी उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है क्योंकि वो पुद्गल से बने हुए हैं। ये ऐसा बराबर पक्का ठोस होना चाहिए। ख्याल में? तो वो जो जड़ है पुद्गल है जिसमें ज्ञान गुण नहीं है, ऐसा कर्म तुमको तकलीफ देगा? हा? अरे नहीं हमको तो 7.5 लगी है ऐसा मानते ना, ये सारा पागलपन है। दूसरा क्या, वस्तु स्वरूप हम क्यों मालूम नहीं ना, तो हम ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा मानते हैं। हमारी जया बन बोलते क्या करे, हमने अंतराय कर्म नड़े छे, अहीं आवाना विचार करे छे ना कोई ना कोई तकलीफ थाई छे। हाँ तो कौन सा कर्म तुमने देखा? बोलते अंतराय कर्म देखा। काला था क्या पीला था? हाँ आपने देखा होगा कि नहीं? नहीं बोलते। कोई चिंता नहीं करना, वो ऐसे सूक्ष्म परिणमन है कि हमारी आंखों से, मैं तो कहता हूं जिनेन्द्र भगवान भी अपनी आंखों से नहीं देखते कर्म को। आगे है ना, जिनेन्द्र को आंखें नहीं है, अरहंतों को? हाँ फिर, अरे वो तो केवल ज्ञान से जानते हैं, और वो जानने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको इंद्रियों के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ख्याल में भाई बात तो ऐसी समझने में आवे तो इतनी इंटरेस्टिंग है, पूछो मत। हमारी मान्यता कुछ उलट पुलट 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 होती है तो हम जरा से लड़बड़ा जाते हैं। अब आगे यहां क्या बात कह रहे हैं, देखो कि ये समझा रहे हैं मुनिराज, जरा ठपको आपे छे। छठे सातवें गुणस्ताने झूलवा वाला वनवासी भावलिंगी दिगंबर संत मुनि के जेनो पंच परमेष्ठी मां समावेश छे, ते वो कहे छे कि अरे प्रभु आत्मा आवो छे ने भाई, आत्मा शाश्वत छे अने तेमा उंडे उतरता तो एकले सुखथी भरेलो छे एम जणाय छे। अंदर आत्मा मां प्रवेशता सुख मळे छे हो, बाकी बाहर मां क्या सुख छे? वळी ते अरूपी छे। कौन? आत्मा। यहां तक आए थे हम, लेकिन हम बहुत बहुत घूम के आए ना, तो क्या पढ़ रहे थे वो भूल गए, इसलिए पूरा लिया आपके लिए। और कहे जे निराकार छे, चैतन्य अमृत थी भरपूर भरेलो छे, अने ज्ञानियों ने गोचर छे, अर्थात जे आत्मा ने समझवा मागे तेने ते समझाए एवो छे। तो आप अगर समझना चाहने वालों में से हो तो आप आधा ज्ञानी हो, और जब जानोगे तो पूरे ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अरे आवो आत्मा छे तो पण तेनी रुचि केम करतो नथी, अने आ बधु शू मांडी छे? मकान पैसा आदि परमा कांईक सुख छे एम मानीने तेनी चिंता केम करे छे? अरे रे दुष्कृत रूप संसार ना सुख ने जुओ, संसार ना सुखनी 64 पेज। अरे रे दुष्कृत संसार ना सुख ने जुओ, संसार ना सुखनी पहला दुष्कृत एवं विशेषण वापरियो छे, अर्थात आ पैसा धूलनु जे सुख छे ते दुष्कृत रूप संसार नु सुख छे जोए छे। ए सुध थयु छे ने, सुख छे। श्रोता पुण्यना परिणाम तो परिणाम मां तो सुख छे ने, हित छे ने। देखो नेंसी भाई अभी बात आई थी ना पहले क्लास में, पहले अपना प्रवचन सार में क्या लिखा इधर, कोई श्रोता था अपने जैसा हमारे जैसा, वो पूछता है पुण्यना परिणाम मां तो सुख छे ने, हित छे ने? अरे रे ए तो दुष्कृत छे। दुष्कृत एटले दुष्कृत्य जेने कहेवाय छे, खोटू काम। छता तेमा सुखनी वांछा केम करे छो, तेने केम वांछे छो? ए 55मो कलश थयो। हवे गाथा नंबर 40 आपणे वांचीए, पेज नंबर 65।
નોઠીતી બંદર ઠાણા પયડી ઠાણા પદેશ ઠાણાવા, નો અનુભાગ ઠાણા જીવસણ ઉદય ઠાણાવા, ન સ્થિતિ બંદર સ્થાનાની प्रकृतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा नानुभागस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि वा स्थितिबन्धस्थानो प्रकृतिस्थान प्रदेशनास्थानो नहि अनुभागनानहि स्थान जीवने उदयनास्थानो नहि स्थितिबन्धस्थानो प्रकृतिस्थान प्रदेशना स्थानो नहि अनुभागनानहि स्थान जीवने उदयनास्थानो नहि।
देखो क्या कहते हैं, अन्वय अर्थ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। जीवस्य याने जीव ने न स्थितिबंध स्थानानी एटले स्थितिबंध स्थानो नथी, प्रकृति स्थानानी एटले प्रकृति स्थानो नथी, प्रदेश स्थानानी वा एटले प्रदेश स्थानो नथी, न अनुभाग स्थानानी अनुभाग स्थानो नथी वा एनो अर्थ के न उदय स्थानानी उदय स्थानो नथी। अभी पहले तो ये थोड़ा सा हमको कर्म की थ्योरी समझनी चाहिए, तो कर्म में तो हमको ये बात कुछ बताना चाहते। जबी जबी इस जीव को बंद होता है। हाँ बोलो बोलो।
देखो स्थान यानी अलग अलग, जो अलग अलग जीवों की अपेक्षा जो अलग अलग बंद होगा। यहाँ तो चार स्थान पहले देखेंगे फिर उदय स्थान देखेंगे। कर्म का बंध होता है तो हम चार प्रकार से उसको बताते हैं। कौन से चार प्रकार? हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रदेश बंध और प्रकृति बंध काहे से होता है? योग से। और स्थिति बंध और अनुभाग कषाय से, यानी मोह राग द्वेष के कारण। अब सभी जीवों को तो समान नहीं होता है प्रकृति प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का अर्थ होता है कितने नंबर ऑफ परमाणु आए, एक समय में कितने परमाणु बनते हैं उसको कहते हैं प्रदेश बंध। एक समय में कौन कौन सी प्रकृति बनती है, या उत्तर प्रकृति की अपेक्षा बताएंगे तो कौन कौन सी प्रकृति बनते हैं तो उसको कहेंगे प्रकृति बंध। जो कर्म बंधा है वो कितने काल तक जीव को यानी उदय रूप रहेगा, स्थिति में रहेगा, उसको कहते स्थिति बंध। और वो क्या फल देगा, उसकी कितनी मात्रा में फल मिलेगा, उसको कहते अनुभाग बंध। अब हर एक जीव के जो योग है वो अलग अलग प्रकार के हैं। किसी को शुभ योग है, किसी को अशुभ योग है, किसी को थोड़ा योग है, किसी को ज्यादा योग है। तो योग के कारण जो कर्म आते हैं उसमें भी चेंजेस होगी।
योग यानी क्या, समझाइए।
हाँ, योग यानी आत्मा में जो कर्म को आकर्षण करने की जो शक्ति है उसको कहते हैं योग। वो तो भाव योग हुआ। और आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है वो हुआ द्रव्य योग।
यानी आत्म प्रदेशों की जो चंचलता होती है, हाँ, तो वो जो आत्म प्रदेशों की चंचलता है उसको कहा गया है द्रव्य योग। और देखो यहाँ द्रव्य और भाव दोनों आत्मा के में ही लगाए रहे। ऐसा नहीं कि जैसा हम पुद्गल में द्रव्याश्रय द्रव्य बंध वगैरह लगाते हैं, वैसा यहाँ भाव द्रव भाव बंध भाव आश्रय जैसा जीव में और पुद्गल में लगाते हैं, ऐसा योगों में नहीं लगाना है। तो योगों में तो क्या कह रहे हैं कि जो कर्मों को खींचने की जो कोई कैपेसिटी शक्ति है, ये तो उपचार से कथन है, ख्याल में आए। तो वो जो है उसको कहा गया है भाव योग। और एक्चुअली जो आत्मा के प्रदेशों का जो चंचलता है या कंपन होता है, अभी हम बैठे बिल्कुल ऐसा बैठे हैं, तो हम क्या समझते कि हम बिल्कुल मन वचन काय से हिलते डुलते नहीं है। तेरा श्वासोश्वास चालू है क्या, तो छाती फूलती है कि नहीं, तो फिर आत्मा के प्रदेश छाती बाहर आती होगी। अगर आत्मा के प्रदेश अंदर रहते होंगे वो आत्मा के प्रदेश भी आगे पीछे होते हैं। सांस लेते हैं छोड़ देते हैं, हाथ उठाते हैं, नीचे रखते हैं, जो कुछ होता है, तो आत्मा के प्रदेश का चंचलता चालू है। ख्याल में तो इसको द्रव्य योग कहेंगे, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता। और भाव योग यानी तो बताए जो पहले होता है वो, मतलब शक्ति रूप जैसे जो है। अब आगे बताइए।
हाँ, यानी जैसे मन की जानने रूप प्रवृत्ति है, मन में विचार करता है जीव, तो आत्मा में कुछ हलन चलन रूप होती है क्रिया, तो उसको कहते हैं वो उसका चंचलपना। शरीर की क्रिया होती है, अभी ये मुर्दे की तो नहीं होती है, तो हम कहते हैं ये जीव है, तभी तो ये श्वासोश्वास चल रहा है, शरीर की क्रिया चल रही है। तो जीव का तो केवल आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, बाकी शरीर की क्रिया तो शरीर में शरीर के कारण होती है, परंतु वहां निमित्त रूप से जीव का योग है, यानी आत्मा का कंपन है। तो जीव मन का, वचन का और काय का अवलंबन लेकर उसमें जो कुछ चंचलता होती है, कुछ कंपन होता है, उसको योग कहते हैं। और उस योग के कारण कर्म के परमाणु आते हैं, बराबर। अब ये योग कमती है ज्यादा है, तो वहां प्रदेश और प्रकृति भी कम और ज्यादा आएगी। जैसे एकेंद्रिय और द्विइंद्रिय जीव है, तो उसमें तो शक्ति कम है, योग की शक्ति कमती है, तो वहां परमाणु भी कम संख्या में आएंगे। तो अभी यहां जो यहां तो बात
एक मिनट, कम आएंगे लेकिन आते तो अनंत में ही।
हाँ,
वो अनंत में कम अधिकता होगी, ऐसा नहीं कि 5-10 उसको आते।
मिनिमम भी अनंत ही है और मैक्सिमम भी अनंत ही है, अनंत में जो कुछ थोड़ा और बहुत हो जाएगा। ख्याल में है? देखो, भाव योग यानी शक्ति, काहे की शक्ति, जैसे लोह चुंबक में वो तो लोहे को आकर्षण करने की शक्ति है, जो स्ट्रांग मैग्नेट होगा उसमें ज्यादा पावर है, वैसे जब योग ज्यादा है तो उसमें ज्यादा पावर है कर्मों को खींचने की, कर्मों को ग्रहण करने की। ये योग के कारण कर्म भी आते हैं और नो कर्मेने शरीर के परमाणु भी योग के कारण ही आते हैं। अभी अपना तो विषय नहीं है, इसलिए उसको अभी हमने अलग यानी बताया नहीं। अयोगी यानी योग पूर्ण रूप से मिट जाता है, आत्मा की चंचलता रहती नहीं है, पूर्ण स्थिर आत्मा के सारे प्रदेश निश्चल हो जाते हैं,
उनके श्वासोश्वास भी नहीं होता है, इसमें समझ लेना।
श्वासोश्वास 13वें के अंत तक ही रहता है, 13वें के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो ध्यान है, यानी उसमें शरीर की सारी क्रियाएं मिट जाती हैं, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म किया जाता है, श्वास भी मंद होता है और फिर रुकता है। शरीर में जो कुछ हम शरीर की क्रियाएं अंदर ही जो कोई बाकी बताते हैं ना, रक्त अभिसरण है, जो कुछ प्रदेशों का चंचलपना रूप जो कुछ है वो सारा मिट जाता है, तो वहां कर्मों का भी ग्रहण नहीं है और शरीर के परमाणु का भी ग्रहण नहीं है। एक अंतर्मूर्त में ऐसी अवस्था है बिना योग की, और फिर जो ऑलरेडी जो बांधे हैं परमाणु वो छूट जाते हैं।
तो वहां 14वें गुणस्थान में एक अंतर्मूर्त के लिए सारी, मतलब काय की भी, काय योग ये वगैरह, तो वचन योग तो बंद ही होता है, और सारा मतलब बिल्कुल आत्मा के प्रदेश निश्चल हो, मतलब चंचलता रहित हो जाते, क्योंकि योग का कंपन उधर नहीं है, इसलिए उसको अयोगी गुणस्थान कहा गया। अभी इन्होंने जो बताया रक्ताभिसरण, समझ में आया आपको, यानी यहां से खून ऐसा इधर 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 घूमता रहता है,
जो कुछ क्रियाएं हैं काय की,
तो आप बोलेंगे वो तो पुद्गल की क्रिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जहां जहां पुद्गल है वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। अरे दोनों का क्षेत्र एक है, दोनों का एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्षेत्र एक है, प्रदेश भी एक है, फिर भी अपना अपना कार्य करते हैं। आप बता रहे थे कि ये
चार, अब ये स्थान ये जो चार हमने देखे थे, तो प्रकृति जो अलग अलग बंधेगी और प्रदेश अलग अलग बंधेगे, तो ये स्थान किसको कहना, उसकी बात हम यहाँ देख रहे थे। तो जैसे हम अकेले मोहिनी कर्म की बात करेंगे, अभी अपना सुबह में यही विषय चल रहा है, तो मोहिनी कर्म का जो बंध है तो कौन से गुणस्थान में कितना होता है, तो उसकी संख्या निश्चित है। तो पहले गुणस्थान वाले को 22 प्रकृतियों का बंध होता है, मोहिनी में यानी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के मिलकर 22 प्रकृति बनती है। मिथ्यात्व बनता है, 16 कषाय बनते हैं, भय जुगुप्सा बनती है, 3 वेद में से एक ही वेद बनता है, और हास्य रति बंधेगा या शोक रति बंधेगी, इस तरह से ये 22 का बंध होता है। तो उसको कहेंगे ये प्रकृति का यानी मोहिनी कर्म का प्रकृति स्थान एक है, बंध स्थान, प्रकृति बंध का एक स्थान है। दूसरे गुण स्थान में 21 प्रकृति बनती है, तीसरे चौथे में 17 ही बनती है, तो इसको कहते हैं प्रकृति बंध स्थान। क्या अलग अलग गुण स्थानों में, अभी ये तो मैंने मोहिनी की बात की, अब जो नाम कर्म की, तो अलग अलग जीव, अलग अलग जो बांध रहे देवगति के साथ अलग प्रकृति बंधेगी, जो मनुष्य गति बांध रहे उसको अलग प्रकृति बंधेगी, जैसे देवगति बांध रहा है उसको वैकरेक वैकरेक अंगोपांग बंधेगे, जो मनुष्य गति का बंध कर रहा है उसको वो औदारिक औदारिक अंगोपांग कोई एक सहनन वगैरह ऐसा होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकृतियों के जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है उसको कहना स्थान,
ये प्रकृति स्थान,
प्रकृति स्थान कहते हैं, प्रकृति के बंध स्थान है,
यहाँ प्रकृति स्थान लिखा है।
प्रकृति स्थान का अर्थ होता है प्रकृति के बंध के स्थान।
अब पहले स्थिति बंध,
अभी स्थिति बंध स्थान यानी स्थिति बंध कितना होता है, तो हमने देखा तो अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी का है मिथ्यात्व का, और मिथ्यात्व का कम से कम बंध कितने का होगा, कम से कम,
हाँ बोलो बोलो,
एक समय, हाँ, अंतर्मूर्त मिथ्यात्व का कहाँ होता है, नहीं देखो अंत कोड़ा कोड़ी सागर रहता है, सम्यक तो होने के पहले अंत कोड़ा कोड़ी रह जाता है ना, हाँ, मिनिमम। तो अभी स्थिति बंध के भेद कौन कौन से हो गए, मिनिमम से लेकर एक एक समय बढ़ता हुआ 70 कोड़ा कोड़ी तक, वो सारे हम उसको स्थिति बंध के अलग अलग स्थान कहेंगे। किसी को 70 कोड़ा कोड़ी होता है तो किसी को 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक समय,
आप इस तरह समझ सकते हैं, किसी को एक 60 मिनट के लिए बंद हुआ है, किसी को 60 मिनट और एक सेकंड, 60 मिनट और दो सेकंड, ऐसा हम समझते हैं, जो कोई मिनिमम अंतक कोड़ा कोड़ी,
मिनिमम यानी जघन्य,
मैक्सिमम
यानी वो उत्कृष्ट,
उत्कृष्ट
और बीच वाले एक एक समय से बढ़ते हुए सारे स्थान होंगे अलग अलग जीवों के, तो इसको कहते हैं स्थिति बंध स्थान। मिथ्यात्व में तो अंतक कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी तक होगा, अब ज्ञानावरण वगैरह जो है तो ज्ञानावरण में तो अधिक से अधिक 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, और मिनिमम वो अंतर्मूर्त का कहो चले, क्योंकि वो 10वें गुणस्थान के अंत में उसका बंध है, वो तो अंतर्मूर्त के लिए बंध है, ख्याल है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकृतियों के अलग अलग बंध स्थान है, यानी स्थिति बंध स्थान अलग है। स्थान किसको कहते उतना ही हमको
देखना है,
वो याद नहीं रहे उसकी कोई बात नहीं है। तो स्थिति बंध स्थान हुए, प्रकृति स्थान यानी कितनी प्रकृति बनती है अलग अलग जीवों को,
यहाँ स्थान का अर्थ आप ऐसा समझो कितने प्रकार से वो बंध होता है, कितने मतलब
ये अलग अलग
स्थिति की अपेक्षा से कुछ एक एक समय बढ़ते 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 है। अब यहाँ जो हमने प्रकृति स्थान देखे तो उसमें भी किसी को कम किसी को अधिक ऐसा जो बनते हैं, इस तरह लेना,
यानी एक ही जीव को अलग अलग यानी अनादि से उसने अलग अलग स्थिति बांधते आया है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा भी ले सकते हैं, या एट अ टाइम अनंत जीव जो अलग अलग स्थिति बांधते हैं उनकी अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं स्थिति बंध स्थान। प्रकृति स्थान बताया, प्रदेश के स्थान यानी अधिक प्रदेश बांधे या कम प्रदेश, प्रदेश यानी परमाणु की संख्या,
नंबर ऑफ परमाणु,
कर्म परमाणु की संख्या जितनी ली जाती,
क्वांटिटी
नंबर,
यानी प्रदेशों की संख्या कितने।
अभी अनुभाग में भी ऐसा ही समझना, अनुभाग के जो स्थान है वो हर एक प्रकृति के अनुभाग यानी जो शक्ति है फल देने की शक्ति, कम से लेकर अधिक से अधिक, उसके भी अनंत अलग अलग भेद होते हैं। प्रत्येक कर्म प्रकृति में अधिक से अधिक कर्म फल देने की शक्ति और कम से कम, उसमें तो शक्ति के अनंत अलग अलग प्रकार है।
असंख्यात लोक प्रमाण भेद
है, हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण तो कर्म के भेद है, और शक्ति के अंश जिसको हम वर्ग वर्गना स्पर्धक कहते हैं, वो स्पर्धक अनंत होते हैं और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गना होती है, यानी अनुभाग स्थान अनंत हो गए और कर्म, हाँ, कर्म के प्रकार है वो असंख्यात लोक प्रमाण है।
जैसे
हाँ
उदय स्थान रह गए, अनुभाग स्थान।
देखो फॉर एग्जाम्पल अगर बताना है तो जो घाती कर्म है तो उसमें बहुत स्थूल रूप से चार नाम बताए हैं, जिसमें कम शक्ति है उसको कहते हैं लता भाग रूप, यानी लता ऐसा नाम दिया उसको। उसमें भी अनंत अलग अलग स्पर्धक यानी अनुभाग वाले परमाणु उसको कहते हैं स्पर्धक, तो वो लता वाले हैं। उससे ज्यादा तीव्र वाले ऐसे जो है उसको कहते हैं दारू भाग, यानी दारू का अर्थ होता है लकड़ी, सूखी लकड़ी,
काष्ठ
जिसको कहते हैं। फिर उससे भी ज्यादा तीव्र जो है उसको कहते हैं अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। ये कठोरती की अपेक्षा जैसे ज्यादा ज्यादा कठोर कठोर है, और सबसे ज्यादा तीव्र अनुभाग वाले जो घाती कर्म है उसको नाम है शैल। तो लता भाग वाले, दारू भाग वाले, अस्थि भाग वाले और शैल भाग वाले, ये जो अनंत प्रकार के जो अनुभाग है उसको चार में डिवाइड कर दिया। नाम हमने बताने के लिए, समझाने के लिए उसके चार बताए। अब अघातिया कर्म में भी दो टाइप है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। अब जो पाप प्रकृति है उसके नाम कड़वाहट की अपेक्षा दिए, जैसे नीम, कांजीर, विष और हलाहल, तीव्रता की अपेक्षा। और जो पुण्य प्रकृति है उसमें कैसे नाम है,
गुड़ शर्करा,
खांड शर्करा और अमृत। ये नाम देके समझा है, मगर हरेक में अनंत अनंत भेद अलग अलग होते हैं। उसको कहते हैं अनुभाग स्थान। स्थान का अर्थ हमको देखना है, स्थान का अर्थ क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार,
वैरायटी,
वो जीव के परिणाम है, उसके निमित्त से अलग अलग ये बनते हैं। तो हमको सोच के बांधना चाहिए, में होती है, जीव अपने परिणाम करता है, और वो परिणाम भी मुझे ऐसा परिणाम करना ऐसा नहीं होता, वो तो सहज रूप से जैसे होने हैं। तो जीव के परिणाम जीव में और कर्म के परिणाम कर्म में, ये दो द्रव्यों की भिन्नता जाननी चाहिए। भले ये स्थान क्या है वो नहीं समझे तो भी चलेगा, इतना ही समझना है कि कर्म की अवस्था कर्म में स्वतंत्र है और जीव की अवस्था जीव में स्वतंत्र है। हमें जो जो मिथ्यात्व या जो कुछ हो रहा है, राग द्वेष जो हो रहा है, हमें लगता है नहीं नहीं हमारे कर्म ऐसे आकरे हैं तो इसलिए हमको ऐसा होता है। जीव स्वयं करता है तो मिथ्यात्व रूप परिणमता है, और जीव स्वयं सुधरे अपनी स्वतंत्रता से तो ये सम्यक्त्व रूप हो जाएगा। तो इस तरह ये स्थान देखे, वैसे उदय के भी स्थान अलग अलग होते हैं। कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय हो सकता है, कौन सी गति में कितनी प्रकृति का उदय है, ये सारा निश्चित है, और उसके भी बहुत सारे भेद है, तो उसको कहते हैं उदय के स्थान।
आज हमने उदय स्थान ही देखना चालू किया ना,
ये अभी उदय के कूट सुबह देख रहे हैं ना, कौन से जीव को कितने प्रकृति का उदय होता है, उसमें कौन कौन सी प्रकृति कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वो कितने कितने होते हैं, ये सारी बातें अभी सुबह चल रही है, जिसको इंटरेस्ट है आना।
अभी यहाँ क्या बता रहे हैं, ये तो कर्णान योग का पहले हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल गया कि ये क्या जो है, ये सारी जो बातें कौन से स्थितिबंध स्थान, प्रकृति स्थान, प्रदेश स्थान, अनुभाग स्थान और उदय स्थान, यह जीव में नहीं है। देखो हमें अगर भेद ज्ञान करना है तो जो चीज हमारी नहीं है उसको भी पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ सब लोग आए हैं, सबके जेब में बहुत पैसे हैं, तो मुझे अगर पैसे खर्चा करना हो तो मेरे ही जेब में हाथ डाल के पैसा निकालना पड़ेगा, दूसरे के जेब में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे तो मारेगा वो। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान करना है ना, तो अपना क्या है और पराया क्या है, मेरे से दूसरा क्या है, इसका भी ज्ञान चाहिए ना हमें, ख्याल में आया? तो वैसा यहां कहते हैं कि भाई ये जो आत्मा जो है, पहले बताया ना ये आत्मा कैसा है, तू केम रुचि करतो नहीं, ऐसा हमको बताया ना, तो आत्मा में क्या क्या नहीं है इस बात का भी तो हमें पता लगना चाहिए। तो क्या नहीं है, तो नाम जो बताया वही उसका हमें स्वरूप मालूम नहीं है, तो उससे हम भिन्नता कैसे करेंगे? ख्याल में आया? अगर हमें उससे भिन्न समझना है तो वो भिन्न यानी कैसे है और क्यों है ये भी तो हमें पता लगे। इसलिए आचार्य बता रहे हैं कि अभी ये अन्वयार्थ में संस्कृत छोड़कर हिंदी पढ़ते गुजराती पढ़ता हूं। जीवने स्थिति बंध स्थानो नथी, प्रकृति स्थानो नथी, प्रदेश स्थानो नथी, अनुभाग स्थानो नथी के उदय स्थानो नथी। एटले आनाती भिन्न एवो आ जीवनु स्वरूप, एवो आ जीवनु स्वरूप छे, एम अहीं समझाय छे। अभी टीका में अहीं आ गाथा मां प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध अने प्रदेश बंधना स्थानों तथा उदयना स्थानों समूह जीवने नथी एम कहूं छे। अभी ये सारे जो है ना स्थिति बंध स्थान, प्रकृति स्थान वगैरह, यह तो पुद्गल के मतलब जो कर्म जो है उनकी अपेक्षा से बताया है, और ये ऐसे कोई भी स्थान, गुणस्थान नहीं, मार्गना स्थान नहीं वगैरह सारी जो बात आती है तो ये बता दे कि इससे यह जीव यानी मैं भिन्न हूं ऐसी पहले नक्की करो। अभी क्या कहते हैं, सदा निरुपराग जेनु स्वरूप छे। अभी निरुपराग का अर्थ क्या बताया, नीचे देखो स्टार लिखा है ना, निरुपराग एटले उपराग विनानु, उपराग एटले कोई पदार्थ मां अन्य उपाधिनी समीपताना निमित्ते थतो उपाधिने अनुरूप विकारी भाव, औपाधिक भाव, विकार, मलिनता। यानी क्या कहते हैं, ये औपाधिक भाव कहो या औदयिक भाव कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। ये औदयिक भाव कितने होते हैं, हाँ कौन बतावे, इधर कोई बताने वाला है, तुम्हें याद है, बोलो बोलो कितने होते हैं पहले ये बताओ। 21 होते हैं। नाम किसको याद है, तेजुबेन? नहीं, हाँ आप बोलो। चलो औदयिक भाव कितने हैं, जोर से बोलना। चार गति, चार कषाय, तीन वेद, छह लेशा, 17 हो गए, अज्ञान, असिद्धत्व, मिथ्यात्व, असंयम, चार हो गए। देखो ये नीचे लेना, मिथ्यात्व, अज्ञान और क्या है, चारित्र की अपेक्षा से असंयम और आगे असिद्धत्व। ऐसे ये 21 प्रकार के जो भाव है उसको कहते हैं औदयिक या यहां औपाधिक भाव। अभी यहां क्या कहते हैं, निरुपराग यानी उपराग विनान, उपराग यानी क्या क्या हो गया कि कोई पदार्थ में अन्य उपाधि नहीं समीपाना निमित्त तो उपाधि ने अनुरूप विकारी भाव। अभी बाकी सब बात छोड़ के इतना समझना कि यह जीव जब औदयिक भाव में जुड़ जाता है, मतलब औदयिक भाव करता है, वो उसके बिना ऐसा यह आत्मा का स्वरूप है। ये आसानी से समझने का तरीका। अभी निरुपराग यानी निकल गया है उपराग जिसमें से, ऐसा ही आत्मा है, तो वास्तव में तो वो अराग स्वरूप ही है। तो क्या कह रहे हैं, देखो सदा यानी अनादि अनंत, अनादि काल से अनंत काल तक कैसा है, निरुपराग जेनु स्वरूप छे एवा निरंजन यानी निर्दोष। निरंजन का अर्थ है अंजन यानी मलिनता, और निर यानी नहीं है, अंजन यानी मलिनता जिसमें यानी जो पवित्र है, ऐसा जो आत्मा। क्या कहा कि सदा निरुपराग जेनु स्वरूप छे एवा निरंजन निर्दोष निज परमात्म तत्व ने खरेखर द्रव्य कर्म ना। द्रव्य कर्म यानी क्या, जया बेन जानती है आप द्रव्य कर्म यानी क्या? दिव्या बेन आप हाँ ज्ञानावरणीय, हाँ आठ जो कर्म है उसको द्रव्य कर्म कहेंगे, बराबर आपने नाम बताए, लेकिन वो जो आठ कर्म का है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म यानी क्या हेतल, मोह राग द्वेष के परिणाम। और नो कर्म यानी क्या साहब, हाँ बोलो। शरीर मन वाणी को देखो, जब जब हम बड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ते हैं ना, आ आत्मा तो द्रव्य कर्म भाव कर्म ने नो कर्म थी रहित छे, तो आप बोलो अरे क्या ये क्या होता है, कुछ नहीं है समझ, बहुत आसान है। यानी आठ कर्मों से भिन्न है ये जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम खोटे परिणाम है, जो विभाव भाव है उससे यह जीव जुदा है, और ये शरीर रूप नहीं है, मान वाणी रूप नहीं है, और मन रूप भी यह जीव नहीं है, इससे जुदा है। ख्याल में तो यहां वही बात है, किसकी द्रव खरेखर। अब यहां ये सारी ये बतानी है ना, बंद स्थान नहीं है, ये नहीं वो नहीं, उसके लिए कह रहे द्रव्य कर्मना, एटले आठ कर्मना जघन्य मध्यम के उत्कृष्ट स्थिति बंदना स्थानो नथी। अभी वैसे ये स्थिति बंद स्थान जो होते हैं ना, वह कितने हैं मालूम है आपको, असंख्यात लोक प्रमाण। कितने, एक लोक में असंख्यात प्रदेश है तो उसको कहते हैं कि असंख्य लोक प्रमाण असंख्यात। ऐसे एक लोक प्रमाण असंख्यात, दो लोक प्रमाण असंख्यात, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण। जरा इधर का उधर शब्द हो गया तो बहुत फेर पड़ता है, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, इतने ये भेद के भेद है। कौन से अभी क्या बताया उन्होंने, तीन में ही बांट दिए, जघन्य मध्यम अने उत्कृष्ट स्थिति बंदना स्थानो नथी। किसमें, निज परमात्म तत्व ने आ स्थानो नथी, केवा स्थिति बंद स्थानो नथी। ते केवा जे स्थिति बंद स्थानो के द्रव्य कर्मना जगन्य मध्यम ने उत्कृष्ट एवा स्थिति बंद स्थानो निज परमात्मा मा नथी। ए केवू छे निज परमात्म तत्व, तो सदा निरुपराग जेनु स्वरूप छे, एवो जे निरंजन निर्दोष एवो जे परमात्म तत्व छे एमा स्थिति बंद स्थानो नथी। बात ख्याल में आ गई। अब आगे कहते हैं ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मो माना तेते कर्म ने योग्य एवो जे पुद्गल द्रव्य नो स्व आकार ते प्रकृति बंध छे। अभी क्या और डिफिकल्ट करके समझाते हैं, कोई बात नहीं। देखो देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरणादि यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय वेदनीय आयु नाम गोत्र, ऐसे जो अष्ट विध यानि आठ प्रकार के, विध यानि प्रकार, क्या कह रहे देखो, ज्ञानावरणादि अष्ट विध कर्मो माना तेते कर्म ने योग्य एवो जे पुद्गल द्रव्य नो स्व आकार ते प्रकृति बंध छे। यानि अभी हम बहुत आसानी से समझेंगे पहले, फिर यहां वर्ड टू वर्ड जाएंगे। जब जब जीव परिणाम करता है तो प्रत्येक समय में नए नए शुभ या अशुभ परिणाम करता है, वो के वो नहीं करेगा, वैसे के वैसे करेगा। ख्याल में, तो समय समय में जो उसके परिणाम होते हैं मोह राग द्वेष के, उसके कारण हर समय अनंत पुद्गल परमाणु बांधता है वो, उसको कहते हैं एक समय प्रबद्ध, यानी एक समय में प्र यानी उत्कृष्ट रूप से बांधता है प्रबद्ध। तो ऐसा जो जीव है जो ऐसे परिणाम करता है तो उसको एक समय में अनंत जथा जिसको हम कहेंगे कर्म परमाणु बांधता है। तो अभी उसमें क्या होता है कि आठ प्रकार के कर्म का उसमें डिवीजन हो जाता है। ये बहुत स्थूल रूप से समझा रहा हूं मैं आपको। बोले वो कौन करता होगा, कोई ऐसा भगवान चाहिए ना ऐसा सबका इसका इसको 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 हर एक खाते में डालने के लिए। तो आचार्य ने ऐसा बताया है कि आप रोज खाना खाते हो क्या, कौन जो आचार्य खाना नहीं खाते वो पूछ रहे तुमको, क्या पूछ रहे हैं। तुम खाना खाते हो क्या? बोले हाँ साहब जरूर खाता हूं। तो उसमें से कौन सा खाना हड्डी रूप बनता है, कौन सा खाना लोई रूप बनता है, कौन सा चमड़ी रूप होता है, नाखून रूप होता है, बाल रूप होता है, विष्टा रूप होता है, तो वो तुम करते हो, कौन करता है? खाना तुम खाते हो ना? तो बोलते हैं अरे वो तो ऐसा सहज हो जाता है। ऐसा यह डिवीजन जो है, विभाजन जो है, ये आठों कर्मों का अपने आप हो जाता है। उसको करने धरने वाला कोई है नहीं। हम सोच सोच कर अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, ज्ञानावरणी कर्म कम बांधे, इसके लिए कोई उपाय है? हाँ बादाम खाओ तो तेरा ज्ञान बढ़ जाएगा बोल लो। यानी ये देखो लोगों की कैसी मान्यता है, वो आंवला तेल लगाओ बोले तो शांति शांति हो जाती है। अरे शांति तेरे में है, खैर तेरे टकले में है, है कहाँ? देखो लोगों को कुछ मालूम नहीं ना, ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि ये अष्टविध कर्म जो है, ते कर्मों माना, यानी वो आठ कर्मों में जो जो ते कर्म ने योग्य एवो जे पुद्गल द्रव्य नो स्व आकार। अभी वो उसका जो डिवीजन हो गया तो उसका आकार अलग अलग होगा, आकार है ना एक जथा। ते प्रकृति बंध छे, यानी प्रकृति बंध, यानी हमने क्या देखा कि जैसा जिसका स्वभाव होगा, ये प्रकृति यानी स्वभाव, ज्ञानावरणी कर्म में उसमें से जो अलग होंगे उसको ज्ञानावरणी कहेंगे, दर्शनावरणी अलग होंगे, ऐसा अलग अलग अलग। तो उसके लिए वो कह रहे हैं प्रकृति बंध छे, तेना स्थानो निरंजन निज परमात्म तत्व ने नथी, यानी प्रकृति स्थानो आत्मा मा नथी, ऐसा समझाते हैं। अशुद्ध अंत तत्व ना, एटले अशुद्ध आत्मा ना अने पुद्गल कर पुद्गल कर, पुद्गल ना प्रदेशों नो परस्पर प्रवेश ते प्रदेश बंध छे। यानी क्या कह रहे हैं, हमारे पास पहले से कुछ कर्म पहले से ही है, मतलब दो मिनट पहले बांधे हुए, एक साल पहले बांधे हुए, पचास साल पहले बांधे हुए, पचास करोड़ साल बांधे हुए, कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधे हुए, ये अपने यहां सत्ता में यानी स्टॉक में पड़े हुए हैं। अब वो नया नया हर समय में नया नया भाव करता है और नए नए कर्म आते हैं, तो वो पुराने कर्मों में ये नया कर्म आके मिल जाना, उसको कहा यहां प्रदेश बंद। क्या कहा देखो, अशुद्ध अंत तत्व ना, ऊपर से चौथी लाइन ना ब्रैकेट में लिखा है, अशुद्ध आत्मा ना अने कर्म पुद्गल ना प्रदेशों नो परस्पर प्रवेश ते प्रदेश बंद छे। यहां तो आत्मा के प्रदेश और आने वाले कर्मों के प्रदेश दोनों को एक है, इसलिए वहां उनको प्रदेश बंद कहा। और ऐसा भी होता है कि पुद्गल पुद्गल में ही रहे, मतलब होता तो ऐसा ही है लेकिन सब दोनों एक साथ में है, इसलिए उनको प्रदेश बंद यहां लिखा है। क्या लिखा देखो, अशुद्ध आत्मा ने पुद्गल कर्म ना प्रदेशों नो परस्पर प्रवेश ते प्रदेश बंद छे। आ बंदना स्थानों पण निरंजन निज परमात्म तत्व ने नथी, शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वालो ते अनुभाग बंद छे। यानी क्या कह रहे हैं, जब ये कर्म जो है ना, तो ये कर्म जो है वो दो प्रकार से निर्जरित होते हैं। हाँ, वो अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम आराम से बोलेंगे कि जिसकी जिसकी स्थिति पूरी हुई है, जैसा हम बैंक में पैसा रखते हैं, जिसकी मैच्योरिटी हो जाए वो पैसा अपने को मिलता है, वैसा ये प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी स्थिति पूरी होने से वह स्वयमेव निकल जाते हैं। वो जो उदय में आके निकल जाना, इसको ही निर्जरा कहते हैं। तो उसके लिए अपने को कोई दंड बैठक मारना नहीं पड़ता कि अरे अभी थोड़ा जावे, वो तो जब बांधते हैं वैसे वो निकल भी जाते हैं अपना अपना टाइम पूरा करके, ख्याल में है? और कई कर्म ऐसे हैं कि जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, राग द्वेष के परिणाम नहीं करता है, शुद्ध उपयोग में है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है तब नए कर्म बांधता तो नहीं, और जो पुराने हैं वो अधिक प्रमाण में निकल जाते हैं, जो अधिक प्रमाण में निकल जाना उसको निर्जरा कहते हैं। और आपको इसके बारे में और डिटेल समझना हो, हाँ सुबह है ना, यहाँ तो ऑर्डिनरी की बात है, तो मैं तो दो प्रकार के निर्जरा बताया आपको। भाई साहब ने बात कही थी ना, शुभ परिणाम से निर्जरा होती है, नहीं शुद्ध उपयोग से। ये निर्जरा तो ऐसा रेगुलर, अरे ये कुत्ता बिल्ली क्या है, कीड़ी मकोड़े ये भी निर्जरा कर रहे हैं कि उन्होंने कर्म बांधते हैं ना, बिना कर्म के थोड़ी होंगे, बिना कर्म के होंगे तो सिद्ध दशा में जाएंगे, कर्म सहित है वो, संसारी जीव है, तो खाली बांधते बैठे ऐसा थोड़ी है। अरे जैसे जैसे टाइम आएगा वो निकल भी जाते हैं उनके ख्याल में है। और शुभ भाव से अगर वो तो होता हो तो तकलीफ हो जावे, क्योंकि निगोदिया जो जीव है, जो अनादिकाल से निगोद में रहते हैं, वे भी वहां से 608 जो हर 6 महीने और 8 समय में नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं, तो वहां भी शुभ भाव कर रहे हैं। वो शुभ भाव करने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, वो तो हो जाते हैं, हम समझते करना चाहिए ऐसा नहीं। चलो तो बात तो ये है कि इस तरह की जो निर्जरा है उसमें से जो रेगुलर निर्जरा है ना, यानी जो अपने अपने टाइम पूरा करके निकलने जाने, उसकी बात यहां ली है। क्या कहते हैं, शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वाड़ो ते अनुभाग बंद छे। बोलना चाहती
देखिए, यहाँ निर्जरा के समय अनुभाग बंद, निर्जरा का समय ने उदय के समय, तो उदय के समय में बंद कैसे कहा, नहीं नए बंद की बात नहीं है, चाहते हैं अभी अभी वर्तमान में हम कोई शुभ भाव कर रहे हैं बराबर, तो शुभ भाव करने से अनुभाग बंद होगा, तो ये अनुभाग बंद किसको कहेंगे कि अभी हमने जो शुभ भाव किया और जो शुभ कर्म बांधा उसका फल हमको वो जब निर्जरा होगी उस कर्म की, यानी वो कर्म जब उदय में आएगा तब उसका हमको फल मिलेगा, परंतु वो कर्म का फल क्या।
हेलो,
हाँ देखिए, अभी जैसे हमने देखा था कि बंद होता है तो नंबर ऑफ परमाणु आते हैं, वो प्रदेश बंद हुआ, कौन सी प्रकृति बंधी वो प्रकृति बंद हुआ, कितनी स्थिति बंधी वो स्थिति बंद हुआ, और ये जो बंधने वाला कर्म जब उदय में आएगा तब क्या फल देगा वो अभी निश्चित हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है बनते समय, इसलिए उसको अनुभाग बंद कहा है, ख्याल है ना। देखो ये वाक्य फिर पढ़ना, शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय ने उसके उदय के समय में, ये निर्जरा ने ऑर्डिनरी, एक समय प्रबद्ध जितना बनता है उतना ही निर्जरा होती है, अनंत परमाणु बनते हैं और हर समय में अनंत निर्जरा होती है, नहीं खिर जाते, ये मोक्ष मार्ग वाली संवर निर्जरा वाली निर्जरा नहीं है, हर समय होने वाली निर्जरा है। हाँ तो इससे जितना बन रहा है उतना ही खिर रहा है, तो कर्म कब खलास होगे, नहीं हो सकते, तो ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, समझ ना। तो ये शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वालो ते अनुभाग बंद छे, यानी ऐसी शक्ति उसमें अभी पड़ी है, वर्तमान में हमने कर्म बांधे हैं तो उसमें अनुभाग अभी पड़ा है, परंतु अभी उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे पारसनाथ मुनि ध्यान में थे तो तीर्थंकर प्रकृति उनकी सत्ता में थी कि नहीं, उन्होंने तो चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें तक बनती है वो, और 2-3 भव उन्होंने बांधी थी, पहले मनुष्य में बांधी, फिर स्वर्ग में गए वहां भी बांधी, फिर वहां से तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर कहना वो तीर्थंकर होने वाला बालक, वहां भी उनका बंध चल रहा था, 8वें गुणस्थान तक बांधी, तो ये उनकी प्रकृति सत्ता में थी तो कितना फल दे रही थी उनको? कुछ नहीं। तो उसका फल कब मिलेगा? वो 13वें गुणस्थान में जाएंगे तब। तो इसलिए यहां कहना चाहते हैं कि शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वालों ते अनुभाग बंध छे। अभी बंधा है तो उसमें शक्ति पड़ी है, परंतु वो शक्ति का फल हमको कब मिलेगा? जब वो उदय में आएगा तब। उसको अनुभाग बंध कहा है, ख्याल में ना? तो ये बंध के हमने चार प्रकार देखे, स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। अब आगे उदय के स्थान में भी ऐसे चार प्रकार से उदय देखना, कौन सी प्रकृति का उदय होगा उसको प्रकृति उदय कहेंगे, कितने नंबर ऑफ परमाणु उदय में आते उसको प्रदेश उदय कहेंगे। अब वो स्थिति उदय ने एक समय का निषेध खेलता है एक समय में, तो उसको एक समय वाली उदय होता है। और अनुभाग में क्या फल मिल रहा है जीव को उसको अनुभाग उदय कहते। फिर भी सबको यहां खाली उदय स्थानों कह दिया है, तो हमें समझना वो भी उदय स्थानों भी चार प्रकार से होगे। हाँ ये अकाम निर्जरा है, मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है वो अकाम।
हम कहीं भी काम की बात देखते हैं, अकाम है जाने दो, क्या काम?
ऐसा है ना, हम क्या कहते हैं, हाँ बहुत आकरा प्रसंग है, फिर शांति से सह लेते है ना, यानी वो तो निकल जाता है। कर्म का उदय तो लिमिटेड पीरियड के लिए है, अभी कोई असाता का भी उदय होगा तो कितने काल तक होगा? तो उसका जब काल पूरा होगा तो दूसरे कर्म का उदय शुरू हो जाएगा, तो वो निकल जाता है। और उस समय हमने बहुत शोक या बहुत कुछ संकलेश परिणाम नहीं किए, आकुलता नहीं की, परंतु पुण्य भी बंधा, बंध से छुटकारा नहीं हुआ। और वो जो निर्जरा हुई तो वो बंध के साथ वाली है, तो उससे मोक्ष मार्ग में कुछ भी प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए उसको अकाम निर्जरा के।
मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है,
बिल्कुल,
इसलिए उसके अकाम कहा। तो क्या कह रहे हैं, देखो नीचे से चौथी लाइन, शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवावाड़ी देवानी शक्ति वाड़ो ते अनुभाग बंद छे। यानी अनुभाग बंद किसको कहते हैं इसकी बात यहां बताइए। अभी जो इन्होंने बहुत बार समझाई आपको, नहीं समझाए तो बताओ, फिर से बताऊंगा, बताने की आवश्यकता है। हाँ फल जो मिलता है, हाँ 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 देखो बात ऐसी, यहाँ तो बहुत स्थूल अपेक्षा से बात कही है, वो तो 10 जो अवस्थाएं हैं कर्मों की, यानी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण वगैरह वगैरह जो हमने याद किया था आपको, वो सारी बातें होती ही रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभी आपने कोई 100% कोई शुभ कर्म बांधा है तो उसका 100% के 100% शुभ फल मिलेगा, ऐसी कोई शाश्वत ही नहीं है। मिल भी सके और ना भी मिल सके, बढ़ भी जावे, 100 का 200 यहाँ चलते हैं और 100 का 0 भी होता है।
यहाँ देखिए, यहाँ अनुभाग बंध में तो बनते समय क्या अनुभाग बंधा उसकी बात है। उदय स्थान में वो आएगा कि जो संक्रमण हुआ या कुछ अपकर्षण हुआ होकर उदय में कितना अनुभाग आया वो उदय स्थान में चला जाएगा। अभी हम बंध स्थान में तो अनुभाग कितना बंधा था उसकी बात करेंगे। बंधने के बाद जीव के परिणामों के अनुसार उसमें भी चेंजेस होते रहते, पुण्य का पाप रूप भी हो जाता है, अधिक फल वाला पुण्य का फल भी बढ़ जाता है, पाप का अनुभाग भी अनंत गुणा कम होता है प्रति समय। कब तत्व विचार करने लगता है? तभी से। अभी तो सम्यक तो बहुत दूर है,
तो सम्यक तो होने के बाद क्या होगा सोचो।
पहले के पाप सारे पुण्य रूप हो जाते हैं, वो उसको हाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न ऐसा है, प्रायोग्य लब्धि में जीव आया तो निर्जरा हुई कि नहीं हुई? तो प्रायोग्य लब्धि में यदि निर्जरा मानेंगे तो अभव्य को भी होती है प्रायोग्य लब्धि। और देखिए वहां क्या होता है, पुण्य कर्म वहां बंध रहा है और पाप कर्म नहीं बंध रहा है। तो कोई ऐसा कहता है वहां संवर की बात है, निर्जरा की नहीं, विशिष्ट प्रकृति का बंध रुक जाता है प्रायोगिक लब्धि में, यानी सम्यक्त होने के पहले पहले। तो वहां अगर कोई मानेगा अरे देखो ये संवर तो हुआ कि नहीं, इतना प्रकृति का बंध रुक गया, तो यदि पुण्य के कारण पाप के संवर मानोगे, पाप प्रकृति का संवर हुआ, तो जब पाप कर रहा है तो क्या होगा, पुण्य कर्म की बंध की संवर हो जाएगा, पुण्य कर्म बंधना रुक गया ना। तीव्र पाप करते समय पुण्य कर्म नहीं बांध रहा है, तो यदि आप पुण्य से पाप का संवर मानोगे तो पाप से पुण्य का संवर मानना पड़ेगा, यानी पाप करते रहो और जीव को संवर हो गया। देखो ये बात शास्त्र में ली, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ली है और अन्यत्र भी, अभी जो विषय चल रहा है ना पंचलब्धि का, उसमें ये बात आएगी। तो वहां ये मोक्ष मार्ग ना संवर ना निर्जरा कुछ भी नहीं कह सकते,
वहां कर्मों की निर्जरा होती जो कहते हैं ना, वो तो कर्म
वहां अभी निर्जरा हुई भी नहीं है बस। नहीं नहीं नहीं, वो संक्रमित तभी नहीं होते, करण लब्धि में हो जाता है सारा,
और कम हो जाती है।
उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के बाद संक्रमण होता है मिथ्यात्व से, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति पहले नहीं होता।
अभी समझ लो, मैं यहां समझा दो, ये अपना है ना, अभी यहां तक समझो 70 कोड़ा कोड़ी के उसने कर्म बांधे और यहां वो प्रायोगिक लब्धि चालू कर रहे हैं, तो प्रायोगिक यहां अंतक कोड़ा कोड़ी, तो ये यहां से आके इधर अंतक कोड़ा कोड़ी में आके बैठेंगे, वो नीचे आके बैठेंगे हाँ, और फिर आप प्रायोगिक लब्धि में से हटके, फिर प्रायोगिक लब्धि में से हटके फिर अपने रेगुलर कार्य में लगोगे, फिर वापस जाएंगे ऊपर, जिसे आज से आते वैसे भी जाएंगे हाँ हाँ। जैसे यानी वो निर्जरित ने उठा अभी निकल गए फल दे के गए, ऐसा नहीं होगा, वो ऊपर से नीचे आना इसको ही कहते हैं हाँ, उसको वो कहें
उपशम वगैरह, वो आगे अनिवृत्तिकरण में आता है, वो तो सम्यक के बहुत थोड़े तत्व विचार करते हैं तो उसका तो पुण्य प्रकृति बंधना चालू होती है और उनकी स्थिति कम होती है, वो छूटते नहीं अभी, स्थिति कम होती है, उदय भी अभी नहीं आए हैं
हाँ, उदय हाँ। में आया पहला निर्जरा नहीं केवा है,
वो मार्ग निर्जरा नहीं है
हाँ। हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं, आवे तो केवा है ना,
ये तो हर समय उदय में आकर खिरता को भी निर्जरा कहते हैं, पर वो संवर वाली निर्जरा नहीं,
वो अभी आपको पता है ना, वो अकाम निर्जरा आप वो बोल रहे हैं, वो
उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं, जिसका स्थिति पूरी हो गई है, विपाक यानी फल देकर खिर जाते हैं उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। टाइम हो गया
हाँ, अभी इतना पूरा नहीं, कल ही होंगे, चलो यहां तक आए थे हम, शुभा शुभ कर्मणी निर्जराना समय वो हो गया है, फिर भी कल कितना, एक तारीख है क्या, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तकणमो सदा देतो। डॉक्टर नमस्कार।